हम तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 53 से। तेरवा पारा शुरू होता है। इस पारे की चंद बातें समझिएगा। कहानी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पीछे से चल ही रही है, लेकिन इस पारे में आपको मुझे उरूजो जवाल के असबाब नजर आएंगे। कैसे अल्लाह किसी को ऊपर करता है और कैसे किसी को नीचे करता है। आयत 56 में यूसुफ अलैहिस्सलाम के अरूज और जवाल की कहानी है, इसके आगे और पीछे। सूरत राद आएगी आगे। आयत नंबर 11 में कौमों के अरूज की बात है। आयत 17 में हक के रुज की बात है कि हक और बातिल के बीच में अल्लाह हक को कैसे नुमाया करता है। और सूरत रात में अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा को उभरने का वो नुस्खा बताता है कि जिस पे अगर कोई अमल कर ले तो बात बने। दूसरी चीज जो अभी हमें सूरत यूसुफ ही के आखिरी हिस्से से मिलेगी वो है नफ्स की खराबियां। नफ्स अम्मारा किस तरह इंसान को अल्लाह का हुक्म मानने से दूर कर देता है। और हम देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीलियां आईं और ये सब कुछ हुआ। असल बात यह है कि जितना ज़्यादा कोई इन चीज़ों पे गौर करेगा उतना उसको अपने लिए अमल के नुस्खे मिलेंगे। फिर इस बारे में आपको शुक्र और सब्र बहुत मिलेगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये 13वां पारा ही सिर्फ लोग पढ़ लें। आप देखेंगे सूरत राद और सूरत इब्राहिम पढ़ लीजिए तो फिर पूछिए कि आज के दौर के मुसलमान की ये जो पस्ती है इसकी वजह क्या है और इसके अरूज का रास्ता क्या है। शुरू करेंगे, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, साथ साथ इसको लेते जाएंगे और अल्लाह ताला से साथ ही साथ ये दुआ करेंगे कि वो हमारे इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और वक्त में बरकत दे कि हम इसको बेहतरीन तरीके से ले सकें। आयत नंबर 53 सूरत यूसुफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं करता, यानी मैं अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं कहता। नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। बड़ी खूबसूरत बात से पारे का आगाज है, नफ्स की कुछ बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ये बताओ उससे बुरा मेहमान कोई होगा जिसकी तुम जितनी इज्जत करो वो तुम्हें उतना जलील करे और जिसको जितना जरा खींच के रखो तो वो सीधा रहे। लोगों ने कहा कि इससे बुरा तो मेहमान कोई नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया, गौर करो, ये तुम्हारा नफ्स है। इस नफ्स की जितने लाड देखेंगे इतना ज्यादा ये आपको शर्मिंदा करेगा। और बात सच है, जितना इस नफ्स के लाड और नखरे देखते हैं ये उतना परेशान है। खड़े हैं, बैठने की जगह मिल जाए, बैठ गए, कुर्सी सख्त है, नरम कुर्सी आ जाए, नरम नहीं जरा सोफा आ जाए, सोफा आया रिक्लाइनर बन जाए, रिक्लाइनर है पाँव के नीचे गद्दी आ जाए, कुछ नहीं जरा घूमने लगे और इतने में पता चला कि सो ही गए। याद रखिए, बचपन से ही इस चीज़ को दबाइए। मैं फिर इस चीज़ पर माओं को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के दौर की तरबियत के अंदाज में नफ्स की पूजा है। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, अच्छा ये बना दूं, अच्छा पिज़्ज़ा नहीं तो बिरयानी, बिरयानी नहीं तो वो ये और वो। और एक वक्त आता है कि नफ्स फूल के कुप्पा हो जाता है। लिहाजा इस नफ्स के तकाजों को दबाने की जरूरत है। सवाल पैदा होता है कि मैं और आप अपने नफ्स की इसलाह चाहते हैं? चाहते हैं? कल मैंने एक छोटा सा 25 मिनट का सेशन दिया था एटलांटा क्लास में, उसी की चंद चीज़ें मुझे कल करते हुए भी फील हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको इससे क्यों महरूम करूं। इसलाह है नफ्स का तरीका। आप और मैं इधर यहाँ क्यों बैठे हैं? सच्ची बात है, हम अपने नफ्स की इसलाह के लिए बैठे हैं। तो चार इसके असूल हैं, नोट कर लीजिए, जो भी नोट कर सकेगा उसको फ़ायदा होगा कि हम अपने नफ्स के बिगाड़ से निकलना चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले एडमिट कीजिए कि हम बिगड़े हुए हैं, मेरे नफ्स में कुछ कमियाँ हैं, मुझे अपनी आदत को चेंज करना है। मेरे इस नफ्स ने मुझे बहुत ही शर्मिंदा किया कई जगह, और यकीन करें हम में से हर एक की कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। हम अपने हाथों खुद मजबूर होते हैं, हर दफ़ा तौबा तिल्ला करते हैं, फिर वक्त आता है तो हम वही रिएक्ट करते हैं जो हम पिछले 10-20 साल से कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में खुद को कैसे बदलें? सबसे पहली चीज़ मुशारता, शर्त लगाइए। इमाम गजाली ने अपनी किताब में इस असूलों को पेश किया है, खुलासा बता रही हैं आपको। कहते हैं कि अपने नफ्स से शर्त लगाओ कि अगर मैंने ये गलती की तो मैं इसको ये काम कर, शर्तें लगाओ, यानी मैंने ये काम नहीं करना। मसलन आज सुबह का वक्त शुरू हुआ, आप अपने आप से शर्त लगाएं सारे दिन में गीबत नहीं करनी। शर्त लगाने वाला आपको पता है कॉन्शियस हो जाता है ना, हार ना जाऊं, कि मैंने अगर ये काम कर लिया तो फिर मैं खुद अपने आप को सजा दूंगा। शर्त लगाइए, जब ये शर्त लगेगी ना तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हिस्से से आप अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। दूसरी चीज मुराकबा, अपने ऊपर नजर रखो। मुराकबा क्या होता है कि चेक करो मैंने सुबह से कितने गुनाह किए हैं, कितने किए नहीं किए। रकीब, गर्दन पे नजर रखने वाला। तीसरा दर्जा होता है मुहासबा, शाम को सोने से पहले अकाउंट्स चेक करो, आज मेरे हिसाब किताब में कितने गुनाह किए और कितनी नेकियां की। और तीसरे के बाद फिर चौथा मुआखजा, पकड़ो फिर अपने आप को। रात को सोने से पहले अपने नफ्स को पूछो कितनी नाफरमानियाँ की, कितनी बुराइयाँ की, कितनी खराबियाँ की। और इससे आप देखेंगे कि जब एक इंसान अपने आप को नज़र में रखेगा ठीक होगा, और जो नाफरमानियाँ करे उसकी सजा दे, और सजा के कि उस पर इबादत का बोझ ला दे। फजर नहीं पड़ी ना, रोज़ा रखूँगी, आज मेरी नमाज छूट गई तो मैं अपने आप को खाने से महरूम करूँगी। और अपने बच्चों को माएँ करती थी ऐसे, चलो भाग जाओ खाना नहीं मिलेगा, तुमने बदतमीजी किया चलो चले जाओ। तो लिहाजा जब तक आप और मैं इस नफ्स पे नजर नहीं रखेंगे ये हमें शर्मिंदा करेगा। और यकीन करें कि आज नफ्स के हाथों हम भी शर्मसार और पूरा मुआशरा है। और सबसे बड़ी बात, दुआएं मांगे। नबी सल्लम ने बहुत खूबसूरत दुआएं सिखाई हैं, अल्लामा इन्नी आउज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसीना, ए अल्लाह मुझे मेरी नफ्स की शरारतों से महफूज कर दे। और एक आयत दुआ में आता है कि ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, अल्लाह पलक झपकते भी मुझे तुम मेरे नफ्स के हवाले ना करना। तो जितना अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और वो छोटा सा एक सेशन है, अगर मुमकिन हुआ तो आपको भिजवा देंगे 15-20 मिनट का, जिससे आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें इसी बात के ऊपर मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे नफ्स को दबा दें, इसको डांटें, इसको झिड़कें। आप कहते हैं हमारे असलाफ अपने आप को डांटा करते थे, खबरदार चुप कर, बहुत अकड़ रही है, बहुत फूल रही है, सीधी हो। और आज अब देखिए ये जो प्रोटोकॉल है ना, हर वक्त अपने आप को बनाना, संवारना, पेश करना, डिस्प्ले कल्चर, उसमें मोटा कौन होता है? नफ्स मोटा होता है, जिसको हम कहते हैं हम जैसा कोई हो तो सामने आए। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स की शरारतों से बचा दे। दोबारा कहानी आगे बढ़ती है। वकाल अल मलिको, बादशाह ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर दूं। जब यूसुफ ने इनसे गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ कदर व मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। या फिर रुकिए, अभी तक तो बादशाह ने यूसुफ के किस्से सुने थे, दूर दूर से जाना था, यूसुफ की बड़ाई दिल में आ चुकी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत खैर दी है, इससे मरूब हो चुके थे। बट जब यूसुफ सामने आकर बैठे, वह कल्लमहू, कलाम क्या होता है? बात करना। तो यूसुफ के आगे दिल हार गए। यहां भी एक बड़ी बात है, मुसलमान को आज अपना किरदार ऐसा करना है कि वन ऑन वन बेस्ड जब उसका इंटरेक्शन किसी नॉन मुस्लिम से हो तो वो इम्प्रेस हो। और बींग अ नेशन, एक उम्मत होने के नाते उम्मत मुस्लिमा को अपने आप को इस तरह पोर्ट्रेट करना है कि जब किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी कंपनी का उनसे वास्ता पड़े वो कहें लोग ही यही हैं, असल यही लोग हैं। क्योंकि इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा बहुत होगा। कहने लगा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं आपको अपना वजीर बनाता हूँ। यहां देखिए जरा हालात का उतार चढ़ाव, कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। यूसुफ से पूछे सुनाओ यूसुफ क्या हालात है, कि क्या बताऊं इतनी लंबी आख मैं क्या। और वहां से फिर वो शुरू करते कुएं की गहराइयों से, और यहां आते कुछ भी नहीं। ये होता है इन्ना लनराक मिनल मुहसिनीन। बादशाह ने उनको कहा मैं आपको ओहदा देना चाहता हूं। अब यहां नोट कीजिएगा कि यूसुफ ने क्या कहा, एजालनी अला खजाइन अर्दी, आज की जुबान में इसका नाम है मुझे अपना वजीर खजाना बना लीजिए, वाह ताकि मैं भी जरा अपने खजाने भरूं। नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो ख्वाब याद था जो बादशाह को अल्लाह ने दिखाया। उनको उस ख्वाब से ये बात समझ आ गई थी कि इस मुल्क पे मुश्किल हालात आने वाले हैं। जब मुश्किल हालात आएंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि इन सालों में किस तरीके से इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाई जाएं कि जिसकी वजह से ये मुल्क खुशहाल रहे। तो यूसुफ ने इस मुश्किल हालात में मिस्र की गिरती हुई मईशत और इकोनॉमिक्स को थामने की कोशिश की। फिर यहां खिराज तहसीन पेश करूंगी इस्लाम के इकोनॉमिकल सेटअप को। आज पूरी दुनिया में आप देखते हैं फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिकल डिसऑर्डर, कोई करेंसी ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। नाम आप ले लें, आपको भी पता है मुझे भी पता है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया पिछले 5 सालों में, नॉर्वेजियन क्रोन पिछले 5 सालों में कहाँ चला गया, और पिछले ये जो साल में ये जो थोड़े से इश्यूज हुए यूके की मनी के साथ क्या कुछ हुआ, रातों रात इधर इधर हुआ। अभी पिछले एक साल के अंदर ही मुझे याद है इंडिया में एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी जिसमें नोट शायद 5 का उन्होंने बंद किया और रातों रात लोग जो थे वो जमीन पे आ गए। ये सारा सेटअप, इसका हल किसके पास है? इस्लाम के पास है। इस्लाम के पास इतना खूबसूरत इस्लामिक सेटअप है कि अगर आज पूरी दुनिया के बैंक और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें जो कर्जों के बोझ में दबी हुई हैं, जो मुश्किलात में, अगर हम मुसलमान उन तक अपना इस्लाम का सेटअप पेश करें, यकीन करें ये दुनिया अमन चैन का गहवारा बन जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर की वो बात कि कोई गरीब नहीं मिलता था कि किसको ज़कात दें, और वही दौर है कि जाओ फिर इस ज़कात के पैसे से दाने खरीद कर पहाड़ों पर डाल दो परिंदे ही खा लें। ये कैफियत पूरी दुनिया में आ सकती है। इस वक्त ये ग्लोबली एक इकोनॉमिकल टेररिज्म चल रहा है, चंद लोगों के हाथ में सारी दुनिया की दौलत है और उन्हीं के नफे नुकसान है और गोल्ड को ऊपर नीचे करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम में ये खूबी थी, अब आज कैसे होगी? पढ़ें आपके बच्चे इकोनॉमिक्स, बट उससे पहले ये सब कुछ पढ़ चुके हों। ये दीन और दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन दुनिया को देने की जरूरत है। हाल यह है कि जिनको इस्लामिक इकोनॉमिक्स आती है उनको दुनिया के 4 लफ्ज नहीं आते, और जिनको माशाल्लाह दुनिया के फरफर लफ्ज आते हैं उनके पास इस्लाम की कोई हू नहीं है। तो इस वक्त जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग इस्लाम को सीख कर दुनिया तक पेश करें, और ये होगा, एक वक्त आएगा। याद रखिए इस दुनिया को अमन चैन मिलना ही तब है जब अल्लाह ताला के सारे मामलात पे बात होगी। फिर दूसरी बात देखिए, यहाँ दो खूबियाँ हैं, मकीन और नमीन। यहाँ माली मामलात की बात है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है। किसी भी काम के करने में बहुत सेंसिटिविटी होती है, लेकिन सबसे हसास काम माली मामला है। आप देखिए 80% शौहर बीवी के झगड़े माल की वजह से होते हैं, और स्पेशली जब सिर्फ मर्द कमा रहे हैं और बीवियां उनसे घर का खर्चा पानी मांगती हैं। आप देखिए लड़ाई जो कई शौहर बीवी कहते हैं अगर हमारे बीच में पैसा निकाल दें तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, अमूमन है। बच्चे अमूमन देखिए माँ बाप के साथ पैसों पे बात करते हैं। इसी तरह याद रखिए कि मुल्की लेवल पे आज अगर सियासतदानों के नाम पे हम क्या कुछ बातें छांटते हैं तो अक्सर उसमें हम पैसे को लेते हैं। दो खूबियां लाजमी हैं, हिफाजत और अमानत। अमानत के अंदर सच्चाई है, कोई बुरा काम नहीं करना चाहता। अब आप देखिए कि मैं अपने ऊपर लूँ, मुझे कोई ऑफर करता है कि आप कोई इकोनॉमिकल मैटर जो है वो यहाँ के डील करेंगी, तो मुझे अपने अंदर ये दो चीज़ें देखनी है। एक तो मैं अमीन हूँ, अमानतदार, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह को जानने डरने वाला बंदा ईमान वाला होता ही। बट जो मसला है वो क्या है कि दूसरी स्किल्स नहीं होती। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज आपके सामने आए वही शख्स इसको कबूल करे कि जो एक एक चीज को रख सके, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात हो जाती है कि बाद में इससे फिर बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, और वो कहना चाहिए कि गुनाह बेलज़्ज़त। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये काम कर दिया। अब इस जुमले को हाईलाइट कीजिएगा जो मैं कह सकती हूँ यूसुफ की पूरी स्टोरी का एक शह सुर्खी है, क्रीम सेंटेंस है, और वो क्या, वकज़ा अली का मक्कन अली यूसुफ फिल अर्दी। इसी तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। किस तरह? ये इसी तरह के अंदर पिछले 30-40 साल है, इतने मरहलों से गुजार कर यूसुफ को असल में हमने मिस्र का हुक्मरान बनाना था। वो मुख्तार था कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। यूसुफ को कोई वीजा नहीं लेना पड़ता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने सारी दुनिया के रास्ते खोल दिए। आज भी ये हो सकता है अगर हम यूसुफ जैसी खूबियां पैदा करें। और नसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुदीउ अजरल मुहसिनीन, हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं और नेक लोगों का अजर हमारे हमारा नहीं जाता। और आखरत का अजर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी से काम करते रहे। देखिए मुहसिन मुत्तकी कानू यत्तकून और मुहसिनीन और आमन, ये तीन सिफात पैदा कर लें, ईमान एहसान और तकवा। पूरी दुनिया आपकी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से आपके मेरे लिए बहुत सारा सबक है और वो यही है कि अल्लाह ताला ने उनको उस काम पे अब फाइज किया है जिसके लिए पिछले कई सालों से तैयारियां हो रही थी। इस पे एक जुमला याद रखिएगा, जिंदगी में जब कभी कुछ भी आपके साथ होता है ये किसी वजह से होता है। कोई काम इस कायनात में बगैर वजह के नहीं होता। सिर्फ आपका मेरा काम क्या है कि उन इशारों को समझें, एक जुमला नोट करें, और वो क्या है कि हालात और वाक्यात हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से पेश आ रहे होते हैं। तकदीर पर राजी रहने की यही खूबी है कि एक इंसान मुख्तलिफ हालात में वाक्यात में उसके ऊपर गौर व फिक्र करता है, इस वक्त अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहता है। वो एक शेर भी है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जिंदगी में इस बारीकी को जो समझ गया उसके लिए खैर ही खैर होगी। अब चौथा मंजर है कहानी का। अब जरा वो वक्त याद कीजिए, नाहनो उसबा, हम बहुत ज्यादा हैं, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता, यूसुफ से करता है। अब यूसुफ के सामने उनके भाई पेश हो रहे हैं। ये एक तवील किस्सा है, इधर जहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वजाए इख्वत यूसुफ फदखलु अलैहि फारहफहुम वहुम लहु मुनकिरून, वो सब गुजर गया। देखिए आपको कहानी में कई चीज़ें मिसिंग दिखेंगी, कुरान का मिजाज भी यही है, वो सिर्फ क्लबें नहीं जोड़ता। एक कहानी के लिए वो कहना चाहिए कि इधर से उधर बात जोड़ के और एक ग्लैमर नहीं पेश करता, बात करता है जिसमें अमल की बात हो। वो कहत आया, पूरी दुनिया में जो मिस्र के इर्द गिर्द के इलाके थे वहां कहत पड़ा। दूसरों को तो नहीं पता था, तैयार नहीं थे, हाथ पांव पड़ गए, इकोनॉमी डूब गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो सारे इंतजाम कर लिए जो उन्होंने ख्वाब की ताबीर के दौरान बताए थे। अब हुआ क्या, इर्द गिर्द जिसमें कनान शाम सीरिया जो भी उसके इर्द गिर्द के इलाके थे उनमें कहत है और मिस्र के पास अनाज है। अब ऐसे वक्तों में अमूमन हुकूमतें क्या करती हैं, एक ही चीज दस की बिकेगी, जखीरा दोजी। यूसुफ चूंकि मोहसिन भी थे, मुत्तकी भी थे, मोमिन भी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐलान आम कर दिया कि चूंकि मिस्र में अनाज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इर्द गिर्द के जो हमारे हमसाया मुल्क हैं वहां के लोग आए, हर बंदे को एक बंदे के वजन का जिसको कोटा सिस्टम कहते हैं उसको अनाज दिया जाएगा। ये बात बाहर फैल गई, लोगों में शोहरत फैल गई कि मिस्र का हुक्मरान बड़ा ही नवाजने वाला है। अब ये बात पहुंच गई कनान में, किन तक, यूसुफ के भाइयों तक। वो सारे जो यूसुफ की जान लेने के दर पे थे उनको क्या पता इधर कौन है। अब वो अनाज लेने के लिए मिस्र में आते हैं, तीन चार दफा आएंगे जिसमें से अब पहली बात है। आइए पढ़ते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए और उसके हां हाजिर हुए, इसने इन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाशना थे। क्यों पहचान लिया, यूसुफ ने भाइयों को पहचान लिया, भाई यूसुफ को नहीं पहचाने। एक तो हिकमत, हदीस में आता है इत्तकु फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह की बुरहान के साथ देख लेता है। जितना तकवा होगा अल्लाह आपको उतना समझदारी देगा, आपको लोगों को पढ़ना आएगा, समझ आएगी, यूसुफ पहचान गए। दूसरी बात यह है कि यूसुफ को तो वो 11 भाई याद थे, कोई बच्चे थोड़ी थे, 7-8 साल की उम्र में जुदा थे, भाई क्यों ना पहचाने। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस यूसुफ को हमने कुएं में फेंका था आज वो हमें मिस्र के तख्त पे दिखेगा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। जिंदगी में आपके साथ ऐसे हालात आ सकते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, अब बस गए इनकी जिंदगी जाया, अब इनको कहाँ खुशी मिलनी है, अब इनके नसीब में क्या है, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे जुमले छांटने वालों को अल्लाह दिखाता है कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ने दिखा दिया कि जो अल्लाह के फैसलों पर राजी हो, दिल की खुशी से अल्लाह की बातों को कबूल करे, अल्लाह उसके हालात कैसे पलटता है। अच्छा हम होते इतने साल बाद भाइयों को देखते और पहचान भी चुके हैं तो क्या कहते हैं, पुलिस को बुलाओ, 14 15 20 साल पुराना कत्ल का मुकदमा खोलो, ये हैं सारे, ये हैं जिन्होंने मुझे डाला था, इसने पकड़ा था, उसने बांधा था, उसने धक्का दिया था, इनको सबको ले जाओ। खामोश, खामोश पानी ज्यादा गहरा होता है, खाली बर्तन बजते ही हैं, खटकते ही रहते हैं। यूसुफ के अंदर भी ठहराव था, चुप। आप देख रहे हैं खुशियां भी आ रही हैं सबर, गम भी आ रहे हैं सबर, ये है एहसान। हर बात अपने ऊपर से गुजार जाए, रिएक्शन ना शो करें। और याद रखिए, एक नसीहत पल्ले से बांध लें, अगर आप सिर्फ 10 सेकंड सबर कर लें किसी अच्छी या बुरी बात को सुनकर, आपको सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों में बेशुमार खूबियां होती हैं बट रिएक्शन शो करने पे काबू नहीं होता। यूसुफ में ठहराव था, हलीम थे, सबर था। आप देखा होगा दिल पे क्या गुजरा होगा, आप अपने ऊपर ले। हाँ, अब यहां से 10 साल बाद पाकिस्तान जाए और भाई बहन सामने हो तो क्या, वैसे ही एक मोहब्बत आ जाती है। यूसुफ ने अपने जज्बात पे काबू पाया। तो लिखिए, लीडर बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए जज्बात पे काबू पाना लाजमी है। किसी पे गुस्सा आया हुआ है, सब्र, जरा ठहर जाओ, 2 घंटे बाद इसका जवाब दूंगी। किसी पे प्यार आया हुआ है, नहीं, इस वक्त ये प्यार दिया तो बिगड़ जाएगा, जरा सब्र, ठहर जाओ। किसी को समझाना है बट अभी मौका नहीं है, ठहर जाओ जरा, इसके मैं दोस्त को जाने दो, फिर समझाऊंगी। ये अगर आप में आ गया ना, आप अच्छी माँ भी हैं, आप अच्छी टीचर भी हैं, आप अच्छे साथी भी बनेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अंदर सब रखा और खामोश रहे। अब क्या हुआ, फिर जब इसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाजूँ। वो छोटे भाई बिन्यामीन को नहीं लाए जो यूसुफ के सगे भाई थे, अब यूसुफ उनको मिलना चाह रहे थे, कहा अगली दफा आओगे तो उसको साथ लेकर आना, अगर तुम इसे नहीं लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया और इन लोगों ने गल्ले के वजह जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान लेंगे, ये इस फयाजी पर एहसान मंद होंगे। और अजीब नहीं कि फिर पलटे, यदि यूसुफ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये भाई वापस आए। और मोहसिन ऐसे ही होते हैं, जो कुछ पैसे थोड़े बहुत उसके थे अनाज के वो भी वापस कर दिए कि इनके ऊपर एहसान करूंगा तो इनके लिए वापस आना आसान होगा। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया। नेगेटिविटी, अभी भी भाइयों के मिजाज में मनफियत है। खूबी नहीं बयान की कि कितना अच्छा रखा किया, हाँ देखो जी कह दिया आइंदा नहीं मिलेगा, ये भी नोट करें, ये टोन बड़ी बुरी होती है। शिकायती अंदाज, कुछ लोगों को सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं, चुनते हैं एक एक की बुराई, और खूबी है तो फिर होगी नहीं। वो मुझे किसी की बात याद आ जाती है, खाना खाते थे ना, उसमें से जीरा चुनना, काली मिर्च चुननी, और हमेशा उनके चावलों में से सुसरी निकलती थी। तो लोगों ने कहना, ये बता ये तेरी चावलों में सुसरी क्यों निकलती है, तो जवाब पता क्या देते थे, कहते होती तुम्हारी भी है, तुम खा जाते हो। याद रखे, ये रवैया ठीक नहीं होता। आप माँ हैं, आप कोई भी किसी लेवल पे हैं, आप अगर सिर्फ खराबियां चुनेंगे ना, सिर्फ खामियां चुनेंगे और सिर्फ ताने देंगे और सिर्फ उनको आप हर वक्त एक बॉस बन के दिखेंगे तो लोग आपसे चढ़ जाएंगे। प्यार के वक्त ऐसा प्यार करें कि उसको लगे कि आपका दिल उमड़ रहा है उससे प्यार से, और जब तरबियत करनी है तो तरबियत कीजिए। भाइयों ने घर आकर बाप को गलती बताया, याद रखिए ये है वो किरदार जो मोहब्बत दिलाता है। कुछ लोग हैं उनके बोलने में, उनके बात करने में, उनके चलने में वो अदब, वो मोहब्बत, वो मैनर है कि दिल करता है कि इनके हाथ भी चूम लो, पांव भी चूम लो। और कुछ लठ मार बात करें ऐसे लगे कि दिल पे मारी, काम करें ऐसे किया जैसे भोंडेपन से। बाप अगर वाकई यूसुफ से ज्यादा प्यार करते थे तो इसमें यूसुफ का किरदार था। आपके भी बच्चे हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगी। हर वो बच्चा आपसे ज्यादा प्यार लेता है जो आपके आगे बादब है, मुअद्दब है। बेटों ने घर आकर फिर बाप को दुखी ही किया, इतने सालों के बाद दोबारा क्या कह रहे हैं, बस आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आए और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि इससे पहले तो उसके भाई के मामले में कर चुका हूं। अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अब यहाँ दोबारा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी बात देख लीजिए। बाप थे, बेटों को आर नहीं दिलाई कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई जुदा हो गया, लेकिन अब दोबारा कितने साल बाद वही मामला आया, तो इसलाह की खातिर पिछली गलती याद कराएं। ये भी एक तरबियत का नुक्ता लिखे, अपने बच्चों को शर्मिंदा ना किया करें, लेकिन इसलाह की खातिर पिछली गलती याद करवाई जा सकती है। और दूसरी बात क्या है कि अब वो बच्चों को आगे उसी गलती को दोहराने से रोकना चाहते हैं। क्या कहा, वलम्मा फतहु मताअहुम वजदू बिदातहुम रुद्दत इलैहिम। और फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी इनको वापस कर दिया गया। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया। यानी यूसुफ की ये तदबीर कामयाब हो गई। वैसे शायद ना आते, लेकिन जब बातें करने के दौरान पैसे भी अंदर से निकल आए, कहने लगे अब तो हम जरूर जाएंगे, बस हम जाएंगे और अपने अहल याल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट बराबर सामान और भी ज्यादा लेकर आएंगे, इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ होगा। इनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, हाँ इल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। इतने मैयर हजरत याकूब ने यूसुफ को भेजते हुए तो नहीं लिए थे, इसीलिए चोट खाई। तो याद रखिए, किसी भी चीज को जब अपने से दूर करें, अल्लाह की हिफाजत के साथ करें। अल्लाह ने अब हिफाजत भी करनी है। और आप देखिए दूसरी इसमें एक और चीज भी क्या है, हदीस में आता है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। एक तजुर्बा बुरा हुआ, अब दोबारा वो गलती ना दोहराइए ताकि फिर आप उसी गलती को दोहराने वाले ना बन जाए। खैर मान गए, और ये जो कहिल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ, ये है तकदीर बा मुकाबला तदबीर। तकदीर गालिब आएगी, नबियों को पता होता है हम कोशिशें तो कर लेंगे लेकिन इसके बावजूद भी जो होना है वो होगा। फिर जब उन्होंने इनको अपने अपने पैमान दिए तो उसने कहा, देखो हमारी इस कॉल पर अल्लाह निगेबान है। फिर इसने कहा, मेरे बच्चों मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको हरगिज़ नहीं बचा सकता, हुक्म इसके सिवा किसी का नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया, जिसको भी भरोसा करना हो इसी पर करे। यहां नसरे बद की थोड़ी सी बात है, नजरे बद से बचाने के लिए बच्चों से कहा इकट्ठे ना जाओ। आप देखिए कि नजर बरहक है, आपको भी अपने बच्चों और अपनी खूबसूरत चीजों और जो अल्लाह की नेमतें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हदीस में आता है कि नजर आदमी को बिस्तर पे और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। और हदीसों से यहां तक पता चलता है कि नजरे बद से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, यानी बीमारियों और जंगों में जितनी भी मौतें ना, उन सबसे ज्यादा नजरे बद से होती है। या फिर थोड़ी सी बात है, वो माँ उबर रही हो नफसी पे, और वो क्या कि आज जब नफ्स मोटा हुआ तो हमने खूबसूरतियों को नुमाया करना शुरू कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। जब पूरे सर से पांव तक आराइश में बैठे होते हैं, उसको स्टेज पे बिठाकर सारी दुनिया को कहते हैं देखो नजर नहीं लगेगी तो और क्या होगा। थोड़े से चंद जुमले, शादी के मौके पर जिस डिस्प्ले के साथ दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, क्या नजर लगने का खतरा नहीं होता? मासूम बच्चे को खूबसूरत कपड़े पे नहाकर सजा संवार कर जब बाहर लाते हैं, नजर नहीं लगेगी? तो नेमतों को छुपाइए, हवा लग जाती है, अपने लिए पहने, अपने लिए ओढ़े, अपने घर में रहकर जिस तरह मर्जी अपनी नेमतों को एंजॉय करें, लेकिन जो आप दूसरों को दिखाते हैं ना तो उसमें नजर लगती है। इसके ऊपर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा नशिस्त होंगी, इंशाल्लाह मैं आपको भिजवाती हूँ। एक बुक है दम जरिया इलाज। बाज दफा आप देखिए कि आप जाहरी कोशिशें पूरी करते हैं लेकिन दवा के साथ फायदा नहीं होता, तो इस किताब में कुछ मसनून दम है, इसका एक पूरा टॉपिक नजरे बद पे, तो इंशाल्लाह उसका लिंक आपको ईमेल में भेज देते हैं। ऐप के ऊपर भी ये बुक मौजूद है और वेबसाइट पे तो ऑफ कोर्स होगी। अगर आप यहाँ से बुक ले लेते हैं और साथ उसकी ऑडियो सुने तो यकीन करें उसमें कितने डिफरेंट एंगल से नजरे बद पे बात हुई है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे।